per sangue sarcini. Tisti nariga prvishwahe. रामायण जी की तीन प्रसिद्ध नारियां जिनके कारण रामायण जी ने तीन विभिन्न स्थानों पर मोड़ लिए। सर्वप्रथम ताटिका, उसके कारण पहला मोड़, दूसरी नारी मंत्रा, दूसरा मोड़, तीसरी नारी का आगमन आज हुआ है शुभनखा, श्री रामायण जी में अंतिम मोड़। आज का प्रसंग यूं शुरू हुआ, दीक्षित के आश्रम से प्रभु प्रस्थान करते हैं, महर्षि अगस्त के आश्रम में पहुंचते हैं, कुछ दिन वहां रहे हैं, बातचीत हुई है उनसे, रहने के लिए ये अंतिम स्थान है। इसके बाद प्रभु राम को कहीं और कुटिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। महर्षि अगस्त से पूछते हैं रहने के लिए। महर्षि अगस्त तत्काल जवाब नहीं देते, आंख बंद करके भावी घटनाओं को देख के तो उचित स्थान का सुझाव देते हैं। आगे की घटनाएं पंचवटी के साथ ही संबंधित हैं और उन घटनाओं को टाला नहीं जा सकता। स्वयं भगवान ही नहीं टालना चाहते तो मैं कौन होता हूं टालने वाला। अतएव कहा कुछ दूरी पर यह स्थान है पंचवटी, आप वहां जाएं, वहां जाके रहे। शुभ्रखा की नाक कटी, नासिका कटी, तो उस पंचवटी का नाम नासिक पड़ गया। इस नासिका के कटने से, नाक कटा, कान कटा, नासिका के कटने से उस स्थान का नाम नासिक पड़ गया। आज उस स्थान को नासिक कहा जाता है। वासना की प्रतीक शुभ्रखा, वासना का स्वभाव होता है, वासना और उपासना दो शब्द हमारे लिए जानने योग्य। वासना का स्वभाव होता है बदलती रहती है, एक पर टिकती नहीं। मुख्य अंतर याद रखिएगा, वासना का स्वभाव है एक पर टिकती नहीं, बदलती रहती है। अभी प्रभु राम सुंदर लग रहे थे तो थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्मण उनसे अधिक सुंदर लग रहे थे, तो ये वासना का स्वभाव है। उपासना में अनन्यता है, उपासना बदलती नहीं है, उपासना एक ही पट्टी की रहती है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए उपासना में बहुत बल है, बहुत बलवती है उपासना। इस वासना का हनन करना चाहते हो, इसको सदा के लिए उन्मूल करना चाहते हो, इसे जड़ से उखाड़ना चाहते हो, तो उपासना ही एकमात्र साधन है। उपासना से ही वासना उखड़ेगी, मरेगी। कल के प्रसंग की साधकों चर्चा आगे जारी रखते हैं। भरत जी महाराज ने आज महारानी कैकेयी को, महारानी कैकेयी को बहुत गाली निकाली है, जो एक पुत्र को शोभा नहीं देती। भरत जैसे संत, परम भक्त, महान भक्त, भक्त श्रोमणि को ये शोभा नहीं देता कि किसी का दोष देखे और वर्णन करे। एक बहुत सूक्ष्म अंतर है देवियों सज्जनों, जो हम सबको जानना चाहिए। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे अपने गुण दिखाई देते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। संत महात्मा कहते हैं इस क्रम को उलटने की जरूरत है, इसको पलटने की जरूरत है। दूसरों के गुण दिखाई देने चाहिए ताकि उन्हें अपने जीवन में उतार सको। अपने दोष स्वदोष देखने चाहिए ताकि उन्हें एक एक करके जीवन से निकल सको। एक साधक का काम यही है। क्या भरत साधक नहीं है? क्या भरत भक्त नहीं है? क्या भरत जी महाराज राम जैसी पवित्र आत्मा के छोटे भाई नहीं हैं? क्या भक्त श्रोमणि नहीं है भरत जी महाराज? ये ऐसी भूल ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? तेरी जबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? हे कुल घातनी कुल नाशनी हे कुमाता, तेरी कोख से मैंने जन्म न लिया होता तो इस वक्त ये अनर्थ न होता। इस अनर्थ का कारण मैं। भरत जी महाराज कहां बात ले जाते हैं, इस अनर्थ का कारण मैं। साधक भक्त अपने आप को दोषी सदा समझता है, मेरे अंदर दोष ही दोष है, मेरे अंदर गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि साधक को या भक्त को कोई गुण अपने अंदर दिखाई देता है तो उसकी ये मान्यता है कि ये गुण मेरा नहीं है, ये परमात्मा की देन है। यहां संत महात्मा समझाते हैं जिस प्रकार से सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब घड़े में पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से साधक के अंदर या भक्त के अंदर जितने भी गुण हैं वह परमात्मा के गुणों के प्रतिबिंब हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। भरत जी इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भक्त जी बहुत ज्ञानी हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं, संभवतया उतने ही जितने राम जी। फिर ये भूल क्यों कर रहे हैं? एक सूक्ष्म अंतर्देवी सज्जनों बहुत समझने की जरूरत हमें। भरत जी जब कैकई कहिए और तो किसी ने उन्हें दोष देखा नहीं है, एक कैकई में ही दोष देखे हैं। जब किसी में भक्त दोष देखता है या वर्णन करता है तो उसके पीछे द्वेष की भावना नहीं हुआ करती, मां कैकई के प्रति द्वेष नहीं है, उनके अंदर द्वेष की अग्नि नहीं जल रही भरत जी के अंदर। हम जब दूसरों के दोष वर्णन करते हैं या देखते हैं तो हमारे अंदर द्वेष की आग जलन हुआ करती है, दूसरे को घटिया सिद्ध करने की बात हुआ करती है, अपने आप को उच्च सिद्ध करने की बात हुआ करती है। भरत जी में ऐसी बातें नहीं है। भरत जी जैसे कल आप जी से अर्ज की थी, यहां पर रामायण जी में एक वैद्य की भूमिका एक चिकित्सक की भूमिका निभा रहे हैं। वह कैकई को इस वक्त कैकई माँ या महारानी कैकई नहीं देख रहे, एक रोगी देख रहे हैं और रोगी किसी प्रकार से घृणा का पात्र नहीं है। यदि डॉक्टर या वैद्य रोगी से घृणा करेगा तो वह इलाज नहीं कर पाएगा, वह घृणा नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार की द्वेष भावना वैर भावना बिल्कुल नहीं है। वह कैकई को सुधारना चाहता है, वह कैकई के रोग को दूर करना चाहता है, एक वैद्य की भूमिका निभाते हुए। देखो क्या प्रमाण है इस बात का, ये जो बात कही जा रही है ये ठीक है। राजा दशरथ सबसे पहले जैसे ही भरत जी महाराज आए हैं, ये सब कुछ सुनने के बाद जो इमीडिएट काम उनको करने वाला था वह ये था राजा दशरथ की अंत्येष्टि। राजा दशरथ के लिए चिता तैयार हो गई है, सब कुछ हो गया है। भरत जी महाराज ने वही थे तो अपने हाथों से सब कुछ किया होगा। जो कोई लकड़ी आग इत्यादि लगानी होती है, जो पुत्र का कर्तव्य है, वही पुत्र था बड़ा। शत्रुघ्न भी साथ होंगे, लेकिन मुख तो भरत ही थे। अपने हाथों से सब कुछ उनने किया होगा, किया है। उस वक्त जब भरत ये सब कुछ करने को तैयार कर रहे थे, उनको बोध हुआ है कि मां कौशल्या इसी चिता में जलने को तैयार है, सती होने को तैयार है। उनका निर्णय भरत जी को पता चला, अतएव सब काम छोड़ के तो मां के पास गए। अब मां वही है, अब मां का कहीं नहीं है, अब मां वही है। जब भी भरत मां कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वे मां कौशल्या को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहीं को नहीं। जाके कहते हैं, मां आपका निर्णय बहुत सुंदर, आप बात काटने से पहले उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। देखें भक्त कैसा होता है, साधक कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, एक संत कैसा होता है। जो बात आपने कही उसका समर्थन करके तो फिर काटेंगे। आप मां जो कह रही हो, जो कर रही हो, जो आपने करने का सोचा है, अति उत्तम। आपका गौरव आकाश को छूने लगेगा। महारानी कौशल्या ने अपने पति के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। एक ही चिता में महारानी कौशल्या जल गई। मतेश्वरी में पापी पुत्र तेरा, अपने आप को क्या संबोधित करते हैं, पापी पुत्र तेरा, तेरी गोद में तेरे चरणों पर अपने सिर को रख के तेरे से भीख मांगता हूं। यदि आपने ये निर्णय ले लिया है, ले ही लिया है, आपके निर्णय को मैं टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी गोदी पे सिर रख के, आपके चरणों पर अपना सिर रख के मां इतनी ही प्रार्थना करूंगा, चिता में बैठने से पहले अपनी इस गोद में मुझे बिठा लेना और दूसरी गोद में शत्रुघ्न को बिठा लेना। मां यदि तू ना रही तो सोच, ये तेरा पापी पुत्र कहां रहेगा। मेरा न घर है अब, न मेरी कोई मां है, मेरी सब कुछ तू है। तू सती होगी तो तेरे साथ ही सुमित्रा भी सती होगी। भरत की बातें देखो, उसके लिए भी ये महानता का चिन्ह बन जाएगा, दोनों को गौरव प्राप्त होगा। आप दोनों को सती होती देख के हो सकता है कि कई भी साथ सती हो जो मैं नहीं चाहता। शास्त्र कहते हैं जो पत्नी सती होती है उसको पति का लोक मिलता है, वे जहां कहीं भी होते हैं उनको वे लोक मिलता है। आप दोनों जाओगी तो पिताश्री की सेवा करोगी, ये चाहेगी वहां पर, तो हो सकता है इस सेवा की बजाय वहां जाके कोई और अनर्थ खड़ा कर दे, मैं नहीं चाहता कि कतई वहां जाए। कतई की ओर मुख मोड़ के, कतई भी वहीं थी, कतई की ओर मुख मोड़ के भरत जी महाराज कहते हैं, महारानी कतई यदि तूने भी निर्णय ले लिया है सती होने का, पक्के है अंदर से ये निर्णय, यदि कौशल्या का है तो सुमित्रा भी होगी, और यदि इन दोनों का है तो कुछ भी है, जो कुछ उससे हुआ सो हुआ, लेकिन कई भी साथी सती होगी इस वक्त। अतएव उन्हें कहते हैं, तेरे पाप का मार्जन, तेरे पाप का पश्चाताप इस अग्नि में जलने से नहीं होगा। भरत जी महाराज महारानी कई को सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, इस अग्नि में जलने से जो घोर पाप तूने किया है इस पाप का मार्जन इस आग में जलने से नहीं होगा। मैं तुझे जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलाऊंगा तो तेरा ये पाप कटेगा। तूने महारानी के कई अनर्थकारी कर्म किया है, इतना घोर कुकर्म सारा संसार कभी, जब तक इतिहास है, इस कुकर्म को कभी भूल नहीं सकेगा। इस कुकर्म का मार्जन, इस पाप का प्रायश्चित इस अग्नि में जलने से नहीं होगा। तनिक सोचो, यदि भरत के हृदय में उनके प्रति हित ना होता तो उन्हें क्यों रोकते? मर जाती, खत्म हो, इसका मरना बहुत जरूरी। एक नहीं, भरत जी की दोष दृष्टि में द्वेष नहीं है, हमारी दृष्टि में और भरत जी की दृष्टि में यही मुख्य अंतर है। हम जब भी किसी के दोष देखते हैं तो हमारे अंदर द्वेष की भावना होती है, नीचा दिखाने की भावना होती है, अपने आप को उच्च सिद्ध करने की भावना हुआ करती है। लेकिन भरत जी के अंदर ये बात नहीं है। भरत जी के अंदर ये बात है, किस ढंग से जिसके अंदर मैं दोष देख रहा हूं, किस ढंग से उसका सुधार हो, और पहले सुधार होगा तो फिर उद्धार होगा। महारानी के कई, तेरा कल्याण इसी में है, मेरे साथ चित्रकूट चल, प्रभु राम को मना वापस आए, उनका राज्याभिषेक हो जो होना था, तो तेरे पाप का प्रायश्चित होगा। तो परमात्मा तेरे पाप को क्षमा करेंगे, तो संत महात्मा तेरे पापों को क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं। यदि भरत जी के अंदर इस प्रकार की, उनके उद्धार सुधार की ये भावना न होती तो ये सब कुछ उनको कहने व करने की जरूरत न होती। याद रखिएगा इस बात को, इस अंतर को याद रखिएगा। चित्रकूट में जो आपस में वार्तालाप होता है, भरत जी पहुंच के प्रभु को कहते हैं, प्रभु सारा दोष मेरी मां का, मेरी मां के कारण ये सब कुछ हुआ है। स्वामी जी ने लिखा है, मेरा मन करता है कि ये इसका हनन कर दो, ये हनन योग्य है, पर तेरा डर है, ये कर्म ठीक नहीं, नारी का हनन ठीक नहीं, तेरा डर है, इत्यादि इत्यादि बयान करते। देखा जाए, भरत जी महाराज कहते हैं, देखा जाए तो ये अनर्थ का कारण तो मैं ही हूं, करने वाली बेशक महारानी के कई है, लेकिन कारण तो मैं हूं। यदि मैं ना होता तो उनको ये अनर्थ करने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझ जैसा पापी कौन होगा? ये चित्रकूट में जाके घोषणा कर रहे हैं प्रभु के सामने भरत जी महाराज। कहते हैं, यदि मैंने राज्य स्वीकार कर लिया तो ये धरती सारी की सारी धरातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। प्रभु राम कहते हैं, भरत मैं ठोक जाके कहता हूं, यदि तूने राज्य स्वीकार न किया तो धरती धरातल में चली जाएगी, कौन ठीक है? कल करेंगे सार्वजनिक इसके आगे की चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।